एक गीत सौ अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियाँ। एक गीत सौ अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।
नमस्कार दोस्तों, एक गीत सौ अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। नमस्कार कबूल करें संज्ञा का। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 2002 की चर्चित फिल्म सुर का गीत कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। महालक्ष्मी अय्यर और साथियों की आवाजें, निदा फाजली के बोल और एमएम करीम का संगीत। कैसे जुड़े एमएम करीम और निदा फाजली फिल्म सुर के साथ? सुनिधि चौहान की आवाज में फिल्म के अन्य सभी गीत होने के बावजूद उनसे ये गीत क्यों नहीं गवाया गया? महालक्ष्मी अय्यर के चुनाव के लिए किन दो बातों का ख्याल रखा गया और उनका नाम किन्होंने सुझाया? क्यों महत्वपूर्ण था ये गीत फिल्म के लिए? क्यों इस गीत की तुलना ऑर्केस्ट्रा सिम्फनी के साथ की जाती है? जानिए इस गीत की तमाम विशेषताएं आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है। आज इसका वाचन कर रही है अर्चना जैन।
अभिनेत्री पूजा भट्ट ने फिल्म निर्मात्री के रूप में भी फिल्म जगत को कुछ यादगार फिल्में दी हैं। खास तौर से उनके द्वारा निर्मित प्रथम चार फिल्में बेहद महत्वपूर्ण रही हैं। ये है तमन्ना, दुश्मन, जख्म और सुर। इन चार फिल्मों के साथ जितना नाता पूजा भट्ट का रहा है, उतना ही रिश्ता तनुजा चंद्रा का भी रहा है। तमन्ना में बतौर सहलेखिका, दुश्मन में बतौर निर्देशिका, जख्म में बतौर पटकथा लेखिका और सुर में बतौर लेखिका व निर्देशिका उन्होंने काम किया। लीक से हटकर इन चार फिल्मों ने तनुजा चंद्रा को फिल्म जगत में एक सम्माननीय स्थान दिलवाया। आज के अंक के लिए जिस गीत को हमने चुना है वह है फिल्म सुर का। इस फिल्म के संगीतकार हैं एमएम करीम। उनका चुनाव कैसे हुआ उस पर हम अभी आते हैं। उससे पहले एक नजर डालते हैं अन्य तीन फिल्मों के संगीतकारों पर। 1997 की फिल्म थी तमन्ना, जिसके संगीतकार थे अनु मलिक। अनु मलिक और महेश भट्ट का एक लंबा साथ रहा है। फिर तेरी कहानी याद आई, सर, दी जेंटलमैन, नाराज, नाजायज और 1996 में बनी चाहत जैसी फिल्मों में दोनों ने साथ में काम किया। यह सिलसिला 1997 की फिल्म तमन्ना में भी जारी रहा। लेकिन जब 1998 में पूजा भट्ट और मुकेश भट्ट ने तनुजा चंद्रा को निर्देशक लेकर फिल्म दुश्मन बनाने की सोची, तब संगीतकार के रूप में उत्तम सिंह को चुना, जो हाल ही में यानी 1997 में दिल तो पागल है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके थे। 1998 में ही पूजा भट्ट की एक और यादगार फिल्म आई, जख्म। इस फिल्म के लिए संगीतकार चुना गया एमएम करीम को, जो इससे पहले भट्ट कैंप में 1994 की फिल्म क्रिमिनल में संगीत दे चुके थे, जो एक तेलुगु हिंदी डबल वर्जन फिल्म थी। एमएम करीम ने तेलुगु फिल्मों के संगीतकार के रूप में अपना सफर 1990 में शुरू किया था। फिल्म क्रिमिनल हिंदी में भी बनने की वजह से वे हिंदी फिल्म संगीत के साथ भी जुड़ गए। 1996 में महेश भट्ट की एक और अनोखी फिल्म इस रात की सुबह नहीं का संगीत भी एमएम करीम ने तैयार किया। फिल्म जख्म भी एक खास और लीक से हटकर फिल्म थी, इसलिए इसमें एमएम करीम को एक बार फिर चुना गया। इस फिल्म में गीतों, खास तौर से गली में आज चांद निकला की अपार सफलता को याद रखते हुए, इसके 3 साल बाद जब पूजा भट्ट ने अपनी अगली फिल्म सुर प्लान की, तब एमएम करीम को ही संगीतकार चुना, क्योंकि फिल्म की विषय वस्तु ही संगीत पर केंद्रित थी, जिसके लिए एक सच्चे म्यूजिशियन की जरूरत थी। सुर फिल्म में एमएम करीम को संगीतकार लेने का एक कारण यह भी था कि यह फिल्म एक 10 साल पुरानी 1992 की तेलुगु फिल्म स्वाति किरणम से प्रेरित थी, जिसके संगीतकार थे केवी महादेवन। इसलिए यह भी एक वजह रही होगी कि जब इसी कहानी पर हिंदी फिल्म बनाने की बात आई तो तेलुगु फिल्मों के ही किसी संगीतकार को चुनने का फैसला लिया गया। और क्योंकि तेलुगु संगीतकार एमएम किरवाणी यानी कि हमारे एमएम करीम साहब भट्ट कैंप में काम कर चुके थे, उनसे बेहतर भला और कौन हो सकता था जो हिंदी रिमेक के गीत संगीत को न्याय दिला पाते। इस प्रकार एमएम करीम बन गए फिल्म सुर के संगीतकार। अब बात करते हैं फिल्म सुर के गीतकार के चुनाव की। शायर और गीतकार निदा फाजली को इस फिल्म के गीतकार के रूप में चुनने के पीछे भी एक तर्क था। निदा फाजली साहब के साथ भट्ट कैंप का पुराना नाता था और एमएम करीम साहब के साथ भी। महेश भट्ट की 1996 की फिल्म इस रात की सुबह नहीं में पहली बार महेश भट्ट ने अपनी फिल्म के लिए निदा फाजली साहब से गाने लिखवाए और वहीं से फाजली साहब और करीम साहब के बीच गीतकार संगीतकार का रिश्ता भी कायम हो गया। पूजा भट्ट ने फिर उनसे अपनी फिल्म तमन्ना में कुछ गाने लिखवाए, जिसमें कैफी आजमी, राहत इंदौरी और इंदिवर जैसे गीतकार भी गीत लिख रहे थे। इस फिल्म के संगीतकार भले एमएम क्रीम ना रहे हों, पर निदा फाजली और एमएम क्रीम फिर एक बार साथ में आए फिल्म सुर में, और अब की बार दोनों ने गीत और संगीत का ऐसा समा बांधा कि इस फिल्म के गाने मास और क्लास दोनों वर्गों में समान रूप से लोकप्रिय हुए, और खास तौर से एमएम क्रीम के हिंदी फिल्म संगीत करियर की श्रेष्ठ रचनाओं में इन्हें शामिल किया जाता है। फिल्म सुर की कहानी एक म्यूजिक टीचर विक्रमादित्य सिंह की कहानी है, एक ऐसा गुरु जिनके मन में अपने सबसे प्रिय शिष्य की सफलता से ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। कहानी का मेरुदंड ही संगीत होने की वजह से और विक्रमादित्य के चरित्र को पर्दे पर जीवंत करवाने के उद्देश्य से एक ऐसे अभिनेता की आवश्यकता थी जिसे संगीत की समझ हो या जो खुद ही एक गायक हो और अभिनय में भी पारदर्शी हो। उस दौर में यानी 1996 से 2001 के दरमियान गायक अभिनेता लकी अली खूब नाम कमा रहे थे। सुनो, सिफर, अक्स और गोरी तेरी आंखें कहती हैं जैसे सफल एल्बम्स देने के बाद जब संगीत का राजेश रोशन ने उनसे 2000 में फिल्म कहो ना प्यार है में जबरदस्त ब्रेक दिया। पूरी दुनिया ने उनके गाए एक पल का जीना और क्यों चलती है पवन गीतों को हाथों हाथ ग्रहण किया। अभिनेता महमूद के बेटे होने के नाते अभिनय तो उनके खून में था ही, कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया हुआ था, जैसे कि छोटे नवाब, यही है जिंदगी, हमारे तुम्हारे और श्याम बेनेगल की फिल्म त्रिकाल। बेनेगल की ही प्रसिद्ध टीवी सीरीज भारत एक खोज में भी उन्होंने अभिनय किया था। इस तरह से उस वक्त लकी अली से बेहतर विक्रमादित्य के किरदार को जीवंत करने के लिए कोई दूसरा हो ही नहीं सकता था। विक्रमादित्य की भूमिका में लकी अली तो विक्रमादित्य की प्रिय शिष्या टीना की भूमिका के लिए नवोदित अभिनेत्री गौरी कार्णिक का चुनाव हो गया। अब बारी आई फिल्म के गीतों को गाने वाले पार्श्व गायकों की। पार्श्व गायक के रूप में लकी अली तो थे ही, चुनाव होना था पार्श्व गायिका का जो टीना की आवाज बन सके। 1999 में फिल्म मस्त में अपनी आवाज का रेंज सिद्ध करने वाली और रातों रात चारों तरफ अपने नाम के परचम लहराने वाली सुनिधि चौहान बनी फिल्म सुर के लिए एमएम क्रीम की पहली पसंद। यहाँ यह बताना जरूरी है कि कहानी में विक्रमादित्य विशुद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत के गुरु नहीं बल्कि आधुनिक संगीत के गुरु हैं, जिनके संगीत में भारतीय संगीत की मधुरता है और पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत की मेलोडी भी। सुरों में उतार चढ़ाव, ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक, भारतीय रागों की छाया, विविध गायन शैली, ये सब गुण मौजूद है विक्रमादित्य के म्यूजिक स्कूल में। इन सब बातों की वजह से और नई अदाकारा गौरी की नई आवाज बनने के लिए सुनिधि चौहान से बेहतर और कोई गायिका उस दौर में भला कौन हो सकती थी। शुरू हुई गीतों की रचना प्रक्रिया। लकी अली और सुनिधि की युगल आवाजों में आ भी जाए सुबह आ भी जा में चाशनी जैसी मिठास है, एक नर्मो नाजुक रचना जिसमें है भारतीय उपशास्त्रीय संगीत की छाया। सुनिधि की एकल आवाज में दिल में जागी धड़कन ऐसे गीत ब्रेथलेस गीतों के जॉनर का गीत है, जिसमें न केवल एक सांस में पूरा मुखड़ा गाया गया है या यूं कहें कि सांस ऐसे ली गई है कि जरा सी भी भनक ना पड़े, बल्कि सुरों का अद्भुत उतार चढ़ाव भी मौजूद है जो हर गायिका के बस की बात नहीं है। सुनिधि और लकी अली का गाया एक और डुएट है तू दिल की खुशी, जो एक सॉफ्ट वेस्टर्नाइज्ड कॉम्पोजिशन है, लेकिन इसमें भी एमएम क्रीम साहब भारत की मिठास भरना नहीं भूले। सुनिधि ने इस गीत में जिस तरह की गायकी का प्रदर्शन किया है, फिर इसके बाद शायद ही कोई ये सवाल उठा सके कि इस फिल्म के लिए सुनिधि का चुनाव क्यों किया गया था। फिल्म की नायिका एक गायिका होने के साथ साथ एक वायलिनिस्ट भी है, इसलिए हर गीत में वायलिन और अन्य स्ट्रिंग्स का बेहद सुंदर इस्तेमाल किया गया है। पाश्चात्य संगीत के सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का फ्लेवर बखूबी हर गीत में महसूस किया जा सकता है और साथ में भारतीय वाद्यों का मनमोहक प्रयोग भी सुनने को मिलता है। कुल मिलाकर फ्यूजन का बेहतरीन उदाहरण है सुर का एल्बम। फिल्म सुर में नायिका की प्लेबैक वाले चार गीत हैं, जिनमें से तीनों गीतों का उल्लेख अभी हमने किया जिनमें सुनिधि चौहान की आवाज है, लेकिन चौथा गीत सुनिधि की आवाज में नहीं बल्कि महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में है। गीत है कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। गायिका में बदलाव के पीछे क्या कहानी है भला, इसका खुलासा होता है इंटरनेट पर उपलब्ध महालक्ष्मी अय्यर के एक साक्षात्कार में। दरअसल बात ऐसी थी कि यह गीत फिल्म का क्लाइमेक्स गीत होने के नाते बेहद महत्वपूर्ण था और फिल्म की कहानी का एक बेहद खास मोड़ भी। गाना कॉन्सर्ट में परफॉर्म होना है जिसमें नायिका वायलिन बजाते हुए गाना गा रही है। उसके मन में उथल पुथल चल रही है, उसकी मनोदशा, उसके अंदर की बेकरारी, दर्द और परेशानी उसके गाने और बजाने में व्यक्त होनी है। इस तरह से इस महत्वपूर्ण गीत के बोलों और धुनों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। निदा फाजली साहब ने कमाल का गीत लिखा और एमएम क्रीम साहब ने अपने हुनर का हर पहलू इस गीत में झोंक दिया। तैयार हुआ एक ऐसा मास्टरपीस जो किसी ऑर्केस्ट्रल सिम्फनी से कम नहीं थी। लेकिन मुश्किल यह हुई कि यह कॉम्पोजिशन सुनिधि की आवाज सर्वोत्तम सिद्ध नहीं हो रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि सुनिधि का रेंज बहुत बड़ा है, बहुत नीची पट्टी से लेकर बहुत ऊंची पट्टी पर वो गा सकती हैं। लेकिन इस गीत के लिए एक ऐसी आवाज चाहिए थी जो ऊंची पट्टी पर देर तक गा सके। इतने हाई पिच पर सुनिधि की आवाज बहुत अधिक आकर्षक नहीं लग रही थी, और तब तलाश शुरू हुई एक ऐसी गायिका की जो न केवल इस हाई पिच गाने के साथ न्याय कर सके, बल्कि जिसकी आवाज सुनिधि की आवाज से बहुत अधिक अलग भी ना हो, ताकि फिल्म को देखते हुए दर्शक ये बहुत अधिक नोटिस ना कर सके कि नायिका की आवाज पूरी तरह से बदल गई है। और तो और, नायिका एक गायिका का किरदार निभा रही है, ऐसे में उसकी आवाज फिल्म में कैसे बदल सकती है भला। महालक्ष्मी अय्यर बताती हैं कि किसी भी नए गायक के लिए ये आशातीत बात होगी कि इतने बड़े कॉम्पोजर का, किसी फिल्म का इतना महत्वपूर्ण गीत किसी नवोदित गायक से गवाया जाएगा। लेकिन इसे मैं अपना सौभाग्य ही कहूंगी कि यह गीत मेरी झोली में आ गिरा। लोग इसे आज भी सुनते हैं, याद करते हैं। ये एक हाई पिच गाना है और सुनिधि की आवाज डीप लो और मिड रजिस्टर है, इसलिए वे एक दूसरी गायिका की तलाश कर रहे थे। निदा फाजली साहब के साथ मुझे इससे पहले एक टीवी धारावाहिक एक टुकड़ा चांद का में काम करने का मौका मिला था, जिसका टाइटल ट्रैक मैंने गाया था। निदा फाजली साहब ने ही मेरा नाम MM क्रीम सर को रिकमेंड किया। फिर शुरू हुआ रिहर्सल। क्रीम सर ने पूरी रिकॉर्डिंग के दौरान मुझे गाइड किया। यह गीत इतना आसान नहीं था, यहाँ तक कि म्यूजिक पोर्शन में भी आलाप लेना था म्यूजिक को मैच करते हुए। ये एक ऐसा गाना है जिसे रिकॉर्ड करने में पूरे 2.5 घंटे लग गए थे। कभी शाम ढले गीत को एक ऐसा मास्टरपीस गीत माना जाता है। वायलिन और ड्रम्स की ऐसी जुगलबंदी शायद ही किसी दूसरे हिंदी फिल्मी गीतों में सुनाई दी हो कभी। गीत की अवधि है 8 मिनट और 10 सेकेंड्स। प्रिल्यूड संगीत 1 मिनट 22 सेकेंड्स का है। उसके बाद वायलिन के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर महालक्ष्मी के विलंबित आलाप का कॉन्ट्रास्ट। गीत का मुखड़ा शुरू होता है 2 मिनट 12 सेकेंड्स पर। गीत में कोरस का भी अद्भुत प्रयोग किया गया है। महालक्ष्मी की मेलोडी और कोरस की काउंटर मेलोडी गीत के मूड को कॉम्प्लीमेंट करती है। क्लाइमेक्स होने की वजह से गीत का अंत भी आकर्षक और प्रभावशाली होना अनिवार्य था। 6 मिनट 46 सेकेंड से लेकर अंत तक वायलिन और ड्रम्स की अद्भुत जुगलबंदी गीत को उसके अंजाम तक ले जाती है, और जब गीत समाप्त होता है तब एक अजीब सी परिपूर्णता का एहसास होता है, ठीक वैसे जैसे कोई कॉन्सर्ट समाप्त हुआ हो। लेकिन एक प्यास बाकी रह जाती है कि काश ये यूं ही कुछ देर और चलता। जब जब MM क्रीम के हिंदी फिल्मी गीतों का जिक्र होगा, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना का भी उल्लेख होगा।
और दोस्तों, यहाँ आकर पूरी होती है ये गीत सौ अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चटर्जी का, वाचन स्वर अर्चना जैन का, और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। एक गीत सौ अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।